بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأهلكناهم بذنوبهم وعن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا الہ الا اللہ والاستغفار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، آج کی اس مجلس میں اس مضمون پر روشنی ڈالنی ہے کہ چھوٹی بڑی جو بھی پریشانی آتی ہیں وہ زیادہ تر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس کا حل کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا اور توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. ابھی ہم نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے یہی مضمون بیان فرمایا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. یہ سورہ انعام کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی قوموں کا تذکرہ کیا جو ہم سے زیادہ خوبصورت تھیں، ہم سے زیادہ تندرست و توانا تھیں، ہم سے زیادہ باغات و نہروں والی تھیں، بلڈنگیں والی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کا قانون توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، تو ساری طاقت و قوت سب رکھی رہ گئی اور ان پر خدا کا عذاب آ گیا اور وہ ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے. پھر میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، چھوٹی سی ہے لیکن اسی حدیث میں اللہ کے رسول نے ہمارا مرض بھی بتا دیا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیا. حضور ارشاد فرما رہے لا الہ الا اللہ اور استغفار، یہ دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لو. پھر فرمایا فاکثروا منہما، ان کی کثرت کرو. پھر ایک راز کھولا حضور نے کہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ گناہ کروا کروا کے ہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور لوگوں نے کیا کیا؟ کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور کثرت سے استغفار کر کر کے مجھ کو یعنی ابلیس کو ہلاک کر دیا. اسی ایک حدیث میں امت کا مرض بھی سامنے آ گیا اور اس کا علاج بھی سامنے. مرض کیا ہے؟ گناہ ہے. اس کا حل کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا، توبہ کرنا، اور توبہ کرنے کے بعد پھر ہماری توبہ نہ ٹوٹے اس کے لیے کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا. اور اس کے بعد بھی ہم انسان ہیں، بشری تقاضے سے یا ماحول سے متاثر ہو کر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو پھر وہ گناہ باقی نہ رہے، جلدی سے معاف ہو جائے، اس کے لیے حضور نے دوسرا نسخہ بتایا، کیا؟ استغفار کی کثرت. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کہیں بے سہارا نہیں چھوڑا. خالی امت हुजूर की तालीमात से चिमट जाए, कलेजे से लगा ले और उस पर अमल का इरादा कर ले, जिस हाल में भी हो अल्लाह के रसूल का नमूना और सैंपल मौजूद है, हुजूर की हिदायत मौजूद है, बस पर अमल करते जाओ और सारी मुसीबतों के बादल छटते जाएंगे। बोलो इरादा कर रहे, अमल करोगे? क्या अमल करना है? गुनाह छोड़ना, तौबा करना और कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिग़फ़ार। आज हमारे पास बड़े से बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े हलाकत के वाकयात आते हैं, हम उसको नकल करते फिरते हैं मगर हम खुद इबरत नहीं हासिल करते। अभी देखिए पिछले दिनों में आपका ऐलान हुआ, माशाल्लाह आपने तआवुन भी किया और वो खबरें कैसी कहाँ कहाँ फैली, लेकिन हम उन खबरों से इबरत नहीं हासिल करते। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों पर जो अजाब आए हैं उनका बहुत तफसील से तज़किरा किया और उस तज़किरे के बाद फिर अल्लाह ताला, आप सोचिए कि ये वाकयात जो है बनी इसराइल पर, अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे बनी इसराइल में, तो फिरौन का जमाना था, फिरौन की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं माना, बहुत समझाते रहे नहीं माना, कहा हम आप पर ईमान नहीं लाए। बनी इसराइल के चंद लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान ली, जिन्होंने माना उन पर इनामात की बारिश हुई और जिन्होंने नहीं माना उन पर अजाब पे अजाब आता चला। इस वक्त मैं बाकायदा जीरोस करा के लाया हूं आपको सुनाने के लिए, सुनिए। इस वाक़े के बाद तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 20 साल मिस्र में मुकीम रहकर उन लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाते और हक की तरफ दावत देते रहे और इस अरसा में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता फरमाए जिनके ज़रिए कौम फिरौन को मुतनब्बे करके रास्ते पर लाना मकसूद था। इन 9 मौजज़ात में सबसे पहले 2 मौजज़े असा और यद बैज़ा का ज़ुहूर फिरौन के दरबार में हुआ, फिर इन्हीं 2 मौजज़ों के ज़रिए जादूगरों के मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम ने फतह हासिल की। उसके बाद एक मौजज़ा वो था जिसका जिक्र इससे पहली आयात में आ चुका कि कौम फिरौन पर उनकी ज़िद और कजरवी के सबब कहत मुसल्लत कर दिया गया, उनकी ज़मीनों और बागों में पैदावार बहुत घट गई जिससे ये सख्त परेशान हुए। बिलआख़िर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रफ़ा कहत को दूर करने के लिए दुआ कराई मगर जब कहत दूर हो गया फिर ये अपनी सरकशी में मुब्तला हो गए और ये कहने लगे कि ये कहत तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की नहुसत की वजह से था और अब जो कहत रफा हो गया ये हमारे हाल का तकाजा है। बाकी 6 आयात और मौजज़ात का बयान मजकूर आयतों में है, क्या है? फ़ारसलना अलैहिम तूफ़ान वल जराद वल कुम्मल वल ज़फ़ादिअ वद्दम आयात मुफ़स्सलात। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां भेजी और घुन का किगड़ा और मेढक और खून का अजाब मुसल्लत किया। इसमें कौम फिरौन पर मुसल्लत होने वाले 5 किस्म के अजाबों का तज़किरा है और उनको इस आयत में आयात मुफस्सलात फरमाया, जिसके माने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर के मुताबिक ये हैं कि इनमें से हर अजाब एक मुअय्यन वक्त तक रहा फिर रुक गया, फिर कुछ मोहलत दी गई, फिर उसके बाद दूसरा अजाब, फिर तीसरा अजाब, इसी तरह अलग अलग होकर उन पर अजाब आया। फिर 1 माह की मोहलत अल्लाह ताला ने अता फरमाई मगर इस मोहलत से भी उन्होंने कोई असर नहीं लिया तो 5वां अजाब खून का मुसल्लत किया गया कि उनके हर खाने पीने की चीज़ खून बन गई। कुएं से हौज से पानी निकाला, जहां कहीं पानी हौज से निकाला कुएं से निकाला बस निकालने के बाद वो खून बन जाता, खाना पकाने के लिए रखें वो खून बन जाए। इन सब अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा मुसलसल था कि हर अजाब, ये अजीब बात थी कि किबती कौम जो फिरौन की कौम थी जो नाफरमान थी सरकश थी उन पर अजाब आता और मिसाल के तौर पर बारिश का अजाब आया तो बारिश के अजाब से किबती कौम फिरौन के मकानात भर गए, उनके खेत भर गए, कोई बैठने उठने की जगह नहीं रही और उन्हीं के पड़ोस में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले जो थे उनकी भी जमीन थी, उनके मकानात थे मगर उनके मकानात में पानी नहीं जाता था, वो साफ तौर से महफूज रहते थे। क्यों? वो अल्लाह रसूल की मान के जिंदगी गुजारते थे। मेरे भाई आज भी इस दुनिया में आप सिर्फ अल्लाह रसूल की मान कर जिंदगी गुजारो, स्पेशल अल्लाह ताला की खसूसी मदद आएगी आपके साथ। यही मैं सुनाना चाह रहा था, सुनो। उन पर अजाब आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की, हजरत दुआ कर दीजिए ये अजाब हट जाए, हम आज से अब बात मानेंगे, आप पर ईमान लाएंगे और हम बनी इसराइल को हमने जो गुलाम बना रखा है वो छोड़ देंगे आपके साथ। दुआ कराते, जैसे ही वो अजाब हट जाता फिर वो सरकशी और नाफरमानी बगावत फिर करने लगते। हम पुख्ता वादा करते हैं कि ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आजाद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और ये अजाब हट गया, मगर अजाब हटने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे पास अब भी इतना जखीरा गल्ला मौजूद है कि हम साल भर खा सकते हैं। फिर सरकशी और अहद चिकनी पर आमादा हो गए, न ईमान लाए न बनी इसराइल को आजाद किया। एक महीना अल्लाह ताला ने फिर मोहलत दी। इस मोहलत के बाद तीसरा अजाब कुम्मल का मुसल्लत। कुम्मल क्या चीज है? कुम्मल उस जू के लिए बोला जाता है जो इंसान के बालों और कपड़ों में पैदा हो जाती है, और उस कीड़े को भी कहा जाता है जो गल्ले में लग जाता है, जिसको घुल लगना कहते हैं। कुम्मल का यह अजाब मुमकिन है दोनों किस्म के कीड़ों पर मुश्तमिल हो, कि गल्लों में घुल लग गया और इंसानों के बदन और कपड़ों में जुओं का तूफान उमड़ आया। गल्लों का हाल ऐसा हो गया था कि उस घुन ने ऐसा कर दिया कि 10 शेर गेहूं पीसने के लिए निकालें तो उसमें से आटा खाली 3 शेर निकलता, यानी 10 किलो आटा में पीसने के लिए गेहूं निकालें, वो घुन के कीड़े उस पे ऐसे लग गए थे कि 10 किलो गेहूं निकालें तो उसमें से आटा कितना मिलता, खाली 3 किलो। ऐसे घुन के कीड़ों ने लग के उसको खराब कर दिया। और जुओं, जो जुओं का अजाब आया था, वो जुओं ने उनकी बाले और पलके और भौंवों तक खा लिया था। आखिर फिर कौम फिरौन की कौम बिलबिला उठी और मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की, अब की मरतबा हम पक्का वादा करते हैं, हम अपने वादे से नहीं फिरेंगे, आप दुआ कर दीजिए कि अजाब टल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यह अजाब भी टल गया, मगर जिन बदनसीबों को हलाक होना ही था वो कहां तक अहद को पूरा करते? फिर आफियत मिलते ही सब कुछ भूल जाते और फिर इनकार करते। फिर एक माह की मोहलत ऐसी मिली, ऐसे आराम और राहत के साथ उनकी जिंदगी गुजरी, मगर इस मोहलत से भी कोई फायदा न उठाया। तो चौथा अजाब उन पर अल्लाह ताला ने मेढकों का अजाब मुसल्लत किया, अल्लाह ने मेढक भेज। अब क्या हुआ, इस कसरत से मेढक उनके घरों में पैदा हो गए कि ये जहां बैठते उनके गले तक यहां तक मेढक आ जाते, गलों का ढेर लग जाता। वो सोने के लिए लेटते तो सारा बदन मेढकों से दब जाता, करवट लेना नामुमकिन हो जाता। पकती हुई हड्डिया में, रखे हुए खाने में, आटे में, हर चीज में मेढक भर जाते। इस अजाब से आजीज आकर सब रोने लगे और पहले से पक्का वादा, पुख्ता वादों के साथ मुआहदा किया कि आप दुआ कर दीजिए यह अजाब रफा हो जाए, अब हम आपकी बात मानेंगे, अब सरकशी नहीं करेंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यह अजाब भी रफा हो गया। मगर जिस कौम पर कहरे इलाही मुसल्लत हो उसकी अकल और होश और हवास काम नहीं देते। इस वाकये के बाद भी अजाब से नजात पाकर फिर ये अपनी हट धर्मी पर जम गए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जादूगर हैं और ये सब उनके जादू के करिश्मे हैं। इमाम बगवी ने रिवायत किया है, फिर क्या हुआ, फिर खून का अजाब मुसल्लत किया गया। पानी निकालें हौज से, कुएं से, वो सब खून बन जाए। खाना पकाने के लिए रखें वो खून बन जाए। और इन सब अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजिजा मुसलसल था कि हर अजाब से इसराइली लोग, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले फर्मा बरदार मोमिन थे, वो महफूज रहते थे। वो बगल में उनका मकान है मगर उनके पानी में उनका पानी खून नहीं बना, मेढक वहां नहीं आए, बारिश का जो अजाब था वो वहां तक नहीं पहुंचा। हर अजाब से इसराइली हजरात बिल्कुल मामून महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा, जब वो पानी उनके हाथ में आ गया वो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर किब्ती और इसराइली दोनों खाना खाते तो जो लुकमा इसराइली उठाता वो अपनी हालत पर खाना होता, और जो लुकमा या पानी का घूंट किब्ती के मुंह में जाता वो खून बन जाता। यह अजाब भी बदस्तूर साबिक 7 रोज रहा। बिलाखिर फिर यह बदकार बैत अहद कौम चिल्ला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की और पहले से ज्यादा पक्के वादे किए। दुआ की गई, फिर अजाब हट गया, मगर ये लोग अपनी उसी हठधर्मी पर जमे रहे। इसी तरह ये 5 अजाब मुसलसल उन पर आते रहे, मगर ये लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। अब आपसे हम ये सवाल करते हैं कि आखिर ये अजाब जो आया था ये तो आज से सैकड़ों साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो कौम थी जिन्होंने नहीं माना उन पर यह अजाब आया था। इस अजाब का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्यों किया? ऐसी किताब जो कयामत तक बाकी रहने वाली है उसमें इसकी इस वाके का, जिन्होंने गुनाह किया था उसकी सजा भुगत लिए। वो कुरान पाक में इसका तस्करा क्यों किया गया मेरे भाइयों? इसलिए तस्करा किया गया कि कयामत तक आने वाली कौमें कान खोलकर सुन लें, अल्लाह ताला से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। जो भी अल्लाह की बात मानकर जिंदगी गुजारेगा अल्लाह उसे अमन देंगे, इज्जत देंगे, राहत देंगे, चैन देंगे, सुकून देंगे। और जो भी अल्लाह की रसूल की बात नहीं मानेगा, अगर वो नबी के खानदान के भी होंगे और नबी का खून होंगे, उन पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये अबू लहब अबू जहल कौन थे? ये हुजूर के खानदान के लोग थे, चचा लोग थे, मगर उन्होंने बात नहीं मानी, उन पर भी अल्लाह का अज़ाब आया। अब आओ हालात का जायजा लो। अभी पिछले दिनों केरला के इलाके में जो तूफान आया, सब बिलबिला उठे, तड़प गए, जगह जगह खबरें फैला रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने मदद किया उनको सवाब मिलेगा। और ऐसे कौमों पर, बहुत ऐसे मौके पर बहुत सी रिफाही तंजीमें बस जाग जाती हैं, खूब जाके मदद करती हैं। बेशक ये मदद करना मुबारक है, सवाब मिलेगा, लेकिन मैं उसकी एक मिसाल देकर समझाता हूं। सुनो, जैसे आप एक जा रहे थे, एक इलाके में बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ा पत्थर था, नोकीला पत्थर, उससे आप टकरा के गिर गए, जख्मी हो गए, फिसल गए, चोट आ गई। तो अब आपको जो चोट आई, जिसने मरहम पट्टी लगाया उसको सवाब तो मिलेगा, ये उसने अच्छा काम किया। लेकिन मेरे भाइयों, उससे बड़ा सवाब का काम यह है कि जिस चट्टान से टकरा कर वो आदमी गिरा है, जिस पत्थर से टकरा कर वो आदमी जख्मी हुआ है, उस पत्थर को रास्ते से हटा दो, ये मसले का हल है। मसला असल क्या है? वो चट्टान क्या है? उम्मत के गुनाहों की चट्टान। उम्मत गुनाह नहीं छोड़ रही है, इसलिए अजाब की शक्लें बदल बदल के आती रही। फिर उन पर अजाब आया, उन पर अजाब आने से हमने क्या नसीहत हासिल किया बताइए? हमारे ऊपर क्या असर हुआ? अगर रोजाना आपकी फजर की नमाज कजा होती थी, आपने नमाज की पाबंदी शुरू की, फजर आपको मिलने लगी, रात को 3 बजे तक आप मोबाइल में डूबे रहते थे, आपने वो मस्ती और अय्याशी छोड़ी, आपकी जिंदगी में चेंजिंग क्या आई? इतना बड़ा अजाब अल्लाह ताला ने दिखाया। इसलिए मेरे भाइयों, ये सब वाकयात अल्लाह ताला जो भेजते हैं, इसलिए ताकि ख्वाब गफलत में सोता इंसान जाग जाए और बेदार हो जाए। अगर ये हालात से जाग जाओगे तो तौबा कर लोगे, वरना फिर कब्र के अजाब में और फिर उसके बाद कयामत के अजाब में मुसल्लत किए जाओगे। बस ये मजमून अब यही रहने दो। गुज़श्ता मैंने जो सिलसिला शुरू किया था वालदैन की नाफरमानी और औलाद की तरबियत का, वो कुछ मजमून नाकिस रह गया था, अधूरा रह गया था, उसको भी पूरा करना है। उस पर मैंने आपको हदीस सुनाई थी, वो हदीस फिर सुना देता हूँ। अन अबी बकर रदियल्लाहु तआला अन्काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल ज़ुनूब यग़फिरुल्लाहु मिन्हा मा शाअ इल्ला उकूकुल वालिदैन फइन्नहु युअज्जिलु लिसाहिबिही फिल हयाति क़ब्लल ममात रवाहुल बैहक़ी कज़ाफिल मिश्कात। ये हदीस पूरी हो। इस हदीस का खुलासा है कि जब बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह ताला कभी कभी उस गुनाह को, उस गुनाह पर दुनिया में फौरी पकड़ फरमाते हैं, कभी चाहते तो माफ कर देते हैं। लेकिन वालदेन को सताने का, उनकी नाफरमानी का जो गुनाह है, वो मरने से पहले उस पर अजाब आके रहता है। यह हदीस का खुलासा। उस पर आपको हमने वाकयात भी सुनाए थे, आज भी एक वाकया सुनाना है। पहले एक हदीस सुनो मां के बारे में। एक सहाबी आए हुजूर के पास, कहने लगे या रसूलल्लाह मन अहक्कुन नासी बिहुस्नी सहाबती, कि या रसूलल्लाह मेरे अच्छे अखलाक का, मेरे हुस्ने सुलूक का और मेरी खिदमतों का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो हुजूर ने फरमाया उम्मक, तुम्हारी मां। सुम्मा मन, कहा या रसूलल्लाह फिर कौन? कहा तुम्हारी मां। सुम्मा मन, फिर कौन? कहा तुम्हारी मां। सुम्मा मन, फिर कौन? कहा तुम्हारा बाप। चौथी मर्तबा हुजूर ने बाप का नाम, 3 मर्तबा मुसलसल मां 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 का। अब देखो, एक शख्स है, वो मां की नाफरमानी नहीं कर रहा है, बल्कि मां को सताना, गाली देना सब कहने के साथ साथ अपनी मां को जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है। अब उस पर देखो खुदा का कैसा अजाब आता है, खुली आंखों दुनिया देख रही है। और यह हदीस हुजूर ने जो फरमाया कि जो भी वालदेन की नाफरमानी करता है वो मरने से पहले उस पर अजाब आके रहता है। इस हदीस की सदाकत और सच्चाई वाकयात की रोशनी में आप मुलाहिजा फरमाएं। एक बहुत ही दर्दनाक वाकया सुनाने जा रहा हूं। एक नौजवान शख्स था, मगर जाहिल था, अनपढ़ था। मां का क्या दर्जा है, बाप का क्या मकाम है, वो नहीं जानता था। उसकी मां और उसकी बीवी में अक्सर लड़ाई चलती रहती, बीवी नाराज होकर मायके चली जाती, वो जाता मिन्नत समाजत करके समझा बुझा के लेके आ जाता, फिर कुछ दिनों बाद फिर लड़ाई होती, फिर समझा बुझा के लेके आ जाता, फिर लड़ाई, फिर वो भाग जाती। एक मर्तबा जब वो भाग गई और ये मनाने गया तो उसकी बीवी किसी कीमत पर आने को तैयार नहीं। उसने एक ही शर्त लगाई, अब मैं वापस इसी शर्त पर आऊंगी कि तुम खुद अपने हाथ से अपनी मां की गर्दन कलम करो, मैं इसी शर्त पर आऊं। वो शहवत परस्त और बीवी का दीवाना ऐसा निकला कि अपनी बीवी की मोहब्बत में ऐसा अंधा और मगलूब हुआ कि अपनी मां को जिसके जिसके कोख से पैदा हुआ उसको जान से मारने का उसने इरादा कर लिया। काश्तकार आदमी था, जाहिल था, गन्ने की खेती थी, और देखो मां को जान से मारने के लिए क्या प्लान बनाया। एक दिन मां को बुलाया, कहा मां मैं जब खेत में गन्ना काटने जाता हूं तो कभी कभी गन्ने का जो बोझ होता है उसको सर पे उठाने के लिए मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, कोई सर पे बोझ उठाने वाला नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ आज खेत में मेरे साथ तू भी चल और जब मैं गन्ने का बोझ इकट्ठा कर लूँ तो मेरे सर पे उठाने में तो मेरी मदद कर। इस तरीके से बहला फुसला के माँ, बेचारी माँ तो माँ होती है, औलाद कितनी भी नाफरमान हो सरकश हो जाए माँ की मोहब्बत नहीं जाती। वो अपनी औलाद की मोहब्बत में बेचारी चली गई, शाक ठीक है मैं चलती हूँ और तेरा बोझ उठा दूँ। वो आज बाकायदा प्लान बना के गया था कि माँ को ख़त्म कर दे, अब फिर देखो क्या हुआ। वो अपने खेत में गन्ना काट रहा है ऐसे दराती से काट रहा है और माँ को खड़ा कर रखा निशाने पे, काटते एकदम निशाने लगा के ऐसी जोर से दराती को माँ के पास भेजा ताकि माँ की गर्दन कलम हो जाए और हमारा मकसद हल हो जाए। मगर भाइयों, अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे, अल्लाह जिसकी हिफाजत करने पर आ जाए उसका कोई बाल बीका भी नहीं कर सकता। अभी उसकी मौत का वक्त नहीं आया था, उसने यूं हमला तो किया और वो दराती उसकी मां के करीब से गुजर गई मगर उसकी मां की जान बच गई। उसने देखा कि इस नालायक ने मेरे ऊपर जानी हमला किया, वो चीखती चिल्लाती शोर मचाती गांव में बहुत भागी पहुंची। अब देखो खुदा की कैसी पकड़ आती। वो हदीस हुजूर के सामने रखो कि वालदेन को सताने का गुनाह ऐसा है मरने से पहले दुनिया में आके रहता है। और यहां पर ये शेर भी याद रखो, अदल इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती। कभी कभी दुनिया में फौरी खुदा की पकड़ आ जाती, इधर गुनाह किया इधर अल्लाह का खुला हुआ सा। जैसे ही उसने नालायक ने यह हरकत की, वो जहां पर था खड़ा पर वहीं पर उसका उसका पांव जमीन में धंसना शुरू हो गया। पांव ने उसको जमीन ने उसके पांव को पकड़ लिया, अब वो जमीन में धंस रहा है। अब उसको एहसास भी हो गया कि मैंने गलत किया और खुदा का अजाब भी आ गया। अब वो चीखना चिल्लाना शुरू किया, हाय मुझे बचाओ, हाय मैं तोबा करता हूं, हाय माफी मांगता हूं। मगर उसकी मां गांव में पहुंच चुकी थी और ये उसका खेत आबादी से इतना दूर था कि इसकी आवाज नहीं पहुंच। जब उसकी मां ने जाके कहानी बताई और लोगों ने आके उसको देखा तो ये सीने तक धंस चुका था। आखिरकार धसते धसते पूरा जमीन में धस गया। खुली आंखों लोगों ने देखा कि ये मां का नाफरमान और मां का कातिल, खुली आंखों अल्लाह ताला ने उस पर ऐसा अजाब भेजा कि जमीन में धसा दिया गया। तो मेरे भाई, ये गुनाह तो बहुत हैं, लेकिन मां बाप को सताने का और नाफरमानी का गुनाह ऐसा है कि मरने से पहले दुनिया में आके रहते। फिर कभी कभी अल्लाह ताला कब्र के अजाब में दिखाते हैं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस ने एक अजीब गरीब वाक्य नकल किया। एक नौजवान था, शराबी था, उसकी मां परहेजगार थी। वो अपने बेटे को नसीहत करती, बेटा अल्लाह से डर, शराब न पिया कर। उसे मां की नसीहत मान लेना चाहिए, मगर मां की नसीहत मानने के बजाय वो मां को और पलट के उल्टा जवाब देता। क्या कहता, क्या गधे की तरह बोलती रहती, चुप रहा। ये मां को ऐसा उल्टा जवाब देता। मेरे भाइयों, उस पर भी खुदा की ऐसी पकड़ आई, उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद असर के बाद उसको दफन कर दिया गया। एक मुहद्दिस नकल करते हैं और हदीस की किताब में इस वाक़े को जहां साहबे तरगीब तरहीब ने जहां बहुत सारी रिवायतें वालदेन की नाफरमानी की नकल की है वहीं पर यह वाक़या भी बयान किया। कहा देखा एक कब्रिस्तान से गुजरे तो देखा असर के बाद का वक्त है, एक कब्र फटी। उस कब्र के फटने के बाद ये देखा कि एक नौजवान शख्स से इस तरह जाहिर हुआ कि ऊपर का आधा हिस्सा गधे जैसा और नीचे का आधा जिस्म इंसानों जैसा, और वो कब्र से बाहर निकलकर तीन मर्तबा गधे की तरह चीख पुकार की आवाज करता है फिर अंदर चला जाता, कब्र बराबर हो जाती है। रोजाना एक बहुत बड़ा मजमा ये मंजर देखता है। वो मुहद्दिस ने हालात की तहकीक की, भाई क्या बात है, ये क्या किस्सा है। तो लोगों ने बताया ये शराबी नौजवान था और इसकी माँ बड़ी परहेजगार थी, वो नसीहत करती थी, समझाती थी कि बेटा अल्लाह से डर और शराब न पी, मगर ये माँ की बात नहीं मानता था और माँ को पलट के उल्टा जवाब देता था। उस पर ये खुदा की पकड़ आई है कि जब से इसका इंतकाल हुआ है, असर के बाद इसको दफन किया गया, तो असर के बाद रोजाना इसकी कब्र फटती है और इस तरह से जाहिर होता है और 3 मरतबा गधे की तरह चीख पुकार करके फिर अंदर चला जाता है, खुली आंखों रोजाना ये मंजर देख रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिनके मां बाप जिंदा हैं उन्हें चाहिए कि अपने मां बाप की दिलो जान से कदर कर लें। मैंने आपको हदीस सुनाया था कि अगर कोई नेक लड़का अपने मां बाप को मोहब्बत भरी एक नजर देखता है, अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, हर नजर पर एक हज का सवाब अता फरमाते हैं। अगर 100 मरतबा आपने देखा तो 100 हज का सवाब मिलेगा। अब आओ एक नाफरमान का और वाकया सुना दूं। एक नाफरमान बेटा था, वो उसके माँ बाप बूढ़े, खिदमत की जरूरत, मगर वो बीवी के चक्कर में बीवी को खुश करने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के बाहर मुल्क सऊदी चला गया नौकरी करने। माँ बाप से कह के गया पैसे भी भेजता रहूंगा, खत भी भेजता रहूंगा। वहां जाने के बाद ऐसा डूब गया कि न माँ बाप को खत भेजता न पैसे भेजता। 13 साल तक वहां रहा। कितने साल तक? 13 साल। और जब मक्के में रहा, मक्के से करीब रहा, तो हर साल हज भी मिलता रहा। उसने 13 हज किए। 13वां हज करके, तवाफ करके, तवाफ जियारत करके मताफ में खड़ा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। एक अल्लाह वाले ने देखा तो उनको रहम आया, पूछा बेटा क्या बात है, कोई खास परेशानी है तो इतना रो रहा है? अब सुनो उसकी परेशानी। बहुत से लोग हज करेंगे, उम्रे करेंगे, मगर वालदेन की खिदमत की तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि बाद मरतबा वालदेन पर जुल्म कर देते। सुनो उनकी इबादतों का क्या हाल। हजरत ने उसे पूछा बेटा क्या किस्सा तेरा? कहा हजरत मैं 13 साल से यहां हूं, हर साल हज कर रहा हूं, और जब हर साल हज से फारिग होता हूं, फारिग होने के बाद ही दूसरे तीसरे दिन ख्वाब में देखता हूं कोई कहने वाला मुझसे कहता है कि 13 हज कबूल नहीं हुआ। कोई कहने वाला मुझसे कहता है कि 13 हज कबूल नहीं हुआ। फिर उसके बाद अगले हज में और रोता धोता हूं, माफी मांगता हूं। फिर उसके बाद हज के बाद दूसरे तीसरे ख्वाब देखता हूं, कोई कहने वाला कहता है कि 13 हज कबूल नहीं। हजरत ने पूछा बेटा क्या तेरे जिम्मे किसी का कोई हक बाकी, हुकूकुल इबाद तो छोड़ के आया क्या? उसने बताया हाँ, मेरी माँ, मेरे वालदेन थे, बूढ़े थे, खिदमत के मोहताज थे, मगर मैं बीवी को खुश करने के लिए मैंने कुछ भी ख्याल नहीं किया, छोड़ के चला आया और यूं कह के आया था खत भी भेजता रहूंगा, पैसे भी भेजूंगा, मगर यहां आने के बाद मैं गाफिल हो गया। हजरत ने कहा जा जा, जल्दी से जा, उनके पांव पकड़, माफी मांग, उनको राजी कर, खुश कर, यही बहुत बड़ी रुकावट है। अब उसको इतना एहसास हो गया कि आया बीवी के पास और कहा अब तू चाहे राजी रहे चाहे नाखुश, मैं कुछ परवाह नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं अपने मां बाप की खबर लेने। मगर बहुत दिनों के बाद वापस जा रहा था, फ्लाइट की टिकट लिया और वापस वहां जब पहुंचा, अब उसको सोच रहा था कि कहां जाऊं, कभी वालदेन जिंदा हैं कि मर गए, बीमार हैं कि सेहत की हालत में है, जिस मकान में रहते थे उसी जगह हैं कहीं और चले गए। खैर रास्ते में एक नौजवान से मुलाकात हुई, उससे कुछ अता पता पूछा कि ऐसे ऐसे बड़े दो एक मर्द औरत बुढ़े थे क्या जानते हो? उसने बताया हाँ हाँ जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, उसमें बड़े मियाँ जो थे वो तो वफात पा चुके, उनका इंतकाल हो गया, उनकी वो जो औरत है वो तुम्हारी माँ जो है वो जिंदा है, वो जिंदा है, मगर वो उनका एक लड़का है वो बाहर मुल्क चला गया, नाफरमान हो गया, इस तरह से वो सुना रहा था। अब वो बेचारा बहुत डरते डरते घर पहुंचा तो देखा मकान के आंगन में एक चारपाई है, उस पर एक बूढ़ी औरत पड़ी हुई है इस तरह कि सिर्फ हड्डियों के ढांचे बाकी हैं और वो जबान से कुछ कह रही है। करीब जाके उसने सुना तो कह रही थी या अल्लाह मेरा शौहर चला गया, कोई मेरा नहीं, मेरा बच्चा है वो दुनिया में मौजूद है, उसे आप भेज दीजिए ताकि मुझे कोई कब्र में उतारने वाला तो आ जाए। वो दुआ मांग रही थी और उसकी दुआ देखो ऐसी कबूल हुई। माँ के करीब गया, माँ को कलेजे से लिमटा लिया, चिमटा लिया, माँ से माफी मांगी, उसकी माँ ने उसको माफ कर दिया और फिर कुछ ही देर के बाद माँ का इंतकाल हो गया। फिर माँ की तजहीर और तकफीन करके जब वापस आया और फिर उसने जो अगला हज किया, फिर अगले हज के बाद फिर ख्वाब में देखा, अब बशारत हुई कि तूने अपनी मां को जो खुश किया, जो उनकी दुआ ली है, अब उसकी बरकत से तेरे पिछले जितने हज थे वो सब कबूल कर लिए गए। तो मेरे भाइयों, माँ बाप ये बहुत बड़ी दौलत होते हैं। अगर किसी के माँ बाप जिंदा हैं, उन्हें चाहिए उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं ले। लेकिन ज़्यादातर ये औलाद जो बिगड़ती है, नाफरमान होती है, अगर माँ बाप गौर करें तो ज़्यादातर उनकी कोताहियों का नतीजा होता है कि जिस उम्र में औलाद को दीनी माहौल देना चाहिए, अच्छी सोहबत देना चाहिए, हम अच्छी सोहबत नहीं देते या खुद हम नेक नहीं होते। याद रखो, अगर किसी के माँ बाप नेक हैं, परहेजगार हैं, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनकी परहेजगारी का असर औलाद पर भी पड़ता है और औलाद भी नेक होती है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होने वाला था, अभी पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा होने से पहले बाकायदा अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम हुआ कि हम आपको एक बेटा देने जा रहे हैं, वो ऐसा बेटा होगा, ऐसा बेटा होगा कि वो जिंदगी भर बड़े बड़े गुनाहों का मुर्तकी भी नहीं होगा, सारी उम्र बड़े बड़े गुनाहों से बचेगा, वो ऐसा बेटा पैदा हो। चुनांचे पैदा हुआ तो हजरत ने इस जुमले की वजह से उनका नाम रखा मोहम्मद मासूम। फिर वो ऐसे नेक बने मेरे भाइयों कि 9 साल की उम्र में अपने वालिद से खिलाफत लिया, यानी बुजुर्गों से जो खिलाफत ली जाती है और बुजुर्गों की जो जगह संभाली जाती है, वो 9 साल की उम्र में इस मकाम पर पहुंच गए थे कि उनके वालिद ने उनको खिलाफत दिया। फिर वो इतने परहेजगार बचपन में थे, एक मरतबा ईद का चांद देखने में इख्तलाफ हो गया, उनके वालिद इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह ईद की नमाज पढ़ के घर में आए। एक मुरीद आया परेशान होकर, कहा हजरत ईद के चांद में इख्तलाफ है, कुछ लोग कह रहे हैं आज ईद नहीं थी और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आज ईद है, तो आज अभी जो आप ईद पढ़ के आए, हमने भी आपके साथ ईद पढ़ी, तो क्या हमारी ईद की नमाज हो गई, वाकई आज ईद है? तो हजरत ने उसके लिए क्या किया, एक खादिम को कहा जाओ घर में मेरा लड़का जो मोहम्मद मासूम है उसके बारे में मालूम करके आओ कि आज दिन में उसने दूध पिया है या नहीं पिया, ये मालूम करके आओ। वो गए, मालूम करके आए तो खबर मिली कि नहीं आज उसने दिन में दूध पी लिया है। हजरत ने कहा जाओ हमारी ईद की नमाज सही हो गई, मेरा ये बच्चा ऐसा है कि रमजान भर जब तक रोजे के औकात रहते हैं मेरा बच्चा माँ को अपनी माँ से दूध भी नहीं पीता, मुंह भी नहीं लगाता, ये इतना परहेजगार बच्चा। तो मेरे भाइयों, अगर औलाद को नेक बनाना चाहते हो आप खुद भी नेक बनने की तो कोशिश करो। आज हम खुद नेक नहीं रहते, परहेजगारी नहीं इख्तियार करते, गाने बाजे सुनते हैं, हराम कारियों में रहते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चा नेक हो। जिनकी माएँ नेक होती हैं उसका औलाद पर असर पड़ता है। इस पर भी एक वाक्य सुन लो, एक माँ थी, उसने अपने बच्चे को एक कारी साहब के यहाँ हिफ्ज करने के लिए दाखिला करवाया। कुछ दिन के बाद शौहर को भेजा कि जाओ देख के आओ क्या हाल, कैसी पढ़ाई चल रही है। उनके वालिद साहब गए, पूछा कारी साहब से, उस्ताद साहब से क्या हाल है, तो उनके उस्ताद ने एक अजीब बात बताई, कहा पढ़ाई इसको बहुत अच्छी चल रही है, शुरू के 3 पारे इतने इतनी जल्दी जल्दी याद करके दे दिए कि अभी तक किसी बच्चे ने इतनी जल्दी याद करके नहीं दिया, मगर 3 पारे के बाद उसकी रफ्तार भी वैसी हो गई जैसे सब बच्चों की। ये अजीब बात है, ये क्या किस्सा बताओ। अब वो आके उसने अपनी बीवी से बताया तो ये सुनकर बीवी मुस्कुराने लगी, कहा इसका राज मैं समझ गई। कहा क्या राज है? कहा असल में शुरू के 3 पारे मुझे हिफज थे, मुझे पक्के याद थे, मैं रोजाना जब दूध पिलाती थी तो वो 3 पारे पढ़ते पढ़ते इसको दूध पिलाती थी, 3 पारा पढ़ते पढ़ते इसको दूध पिलाती थी, उसकी बरकत से अल्लाह ने कुरान का जो नूर था इसके सीने में उतार दिया और उसके बाद जैसी इसने बाहर थोड़ी सी मेहनत की वो आसानी से याद हो गए। अब उसके बाद के 3 पारे तो मुझे याद नहीं थे और मैं तिलावत भी नहीं करती थी इसको लेके, लिहाजा आगे वो चल नहीं रहा। तो मेरे भाइयों, माँ बाप अगर नेक होते हैं तो उसका असर औलाद पर पड़ता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से तकरीबन 7 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। एक मरतबा बहुत खुश खुश घर में आए, माँ से कहने लगे माँ 7 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया मेरे हाथ पर। तो माँ कहने लगी बेटा ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल। कहा क्या आपका कमाल क्या है बताओ। कहा बेटा मेरा मामूल ये था, जब भी मैं तुझे दूध पिलाती थी बावजू हालत में दूध पिलाती थी, बगैर वजू मैंने तुझे कभी दूध नहीं पिलाया, उसकी बरकत। कहा बेशक उसकी बरकत। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें नेक हों, हमारी फर्माबरदार हों, हमारी आंखों की ठंडक हों, बुढ़ापे का सहारा बने, मरने के बाद हमारे लिए बख्शिश का हाथ उठाने वाले बने, तो सबसे पहले इसकी फिक्र करो कि बच्चे को दीनी माहौल, अभी मैंने सारी इतनी हदीसें सुनाई अजाब की, आखिरी इस अजाब का असर कौन लेगा? वो लेगा जिसका यह अकीदा होगा कि हमको मरने के बाद अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है, कयामत का अकीदा होगा, कब्र का अकीदा होगा। और जिसका यह अकीदा ही नहीं, वो सोचो भाई खाओ पियो मौज मस्ती करो खत्म, तो वो क्यों अल्लाह से डरेगा बोलो। इसलिए मेरे भाइयों, सबसे पहले बचपन में बच्चों का यकीदा बनाओ कि कयामत का अकीदा बरहक है, अल्लाह का वादा बरहक है, जो भी इस दुनिया में आया है बहरहाल उसको एक मरतबा एक न एक दिन यहां से जाना है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अब न गफलत में गंवाना एक दिन, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं। आज कितने माँ बाप ऐसे आवारा हैं कि खुद औलाद को बेदीनी का हुक्म करते हैं। एक बेचारा लड़का नौजवान था, उसने जवानी में दाढ़ी रख लिया, तो खुश होने के बजाय उसकी माँ उसको खत लिख रही है, बेटा दाढ़ी छिलाकर तुम अपनी असली हालत में वापस आ जाओ। क्या माँ क्या लिख रही है, ये क्या मतलब, दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है वो उसको अच्छा नहीं समझ रही है, कह रहे नहीं तुम्हारी जो पहली असली हालत थी दाढ़ी मुंडी उसी हालत में छिला के, ये माँ ऐसी बात के। आज के कितने माँ बाप ऐसे, एक बाप है उनका लड़का MBBS डॉक्टर हो गया, पैसे खूब कमा के ला के दे रहा है, तो कह रहे हैं कि मेरा लड़का बहुत नेक है और बड़ा सआदतमंद है और बहुत पैसे ला के देता है, डॉक्टर है, एक जरा ऐसा बदहरिया हो रहा है। क्या कह रहे, कुछ बात समझ में आई? क्योंकि पैसे का आजकल बहुत सारे माँ बाप, अगर लड़का पैसा कमा के ला दे समझते बस हम कामयाब है, पैसा कमा के ला के दे ना, आगे बेनमाजी है, शराबी है, जुआरी है, और अल्लाह को नहीं मानता, रसूल को नहीं मानता, आखिरत का कोई अकीदा नहीं, कोई परवाह। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि मेरा लड़का MBBS है, को पैसे ला के देता है, बड़ा नेक है, सआदतमंद, और आखिर में क्या कह रहे, एक जरा से दहरिया, जानते दहरिया किसे कहते, दहरिया उसे कहते हैं जो खुदा के वजूद का भी इनकार कर। ये ऐसे ही हुआ जैसे मैं कहूं साहब आपकी आंख भी बहुत अच्छी है और बाल भी बहुत अच्छे हैं, हाथ भी बहुत अच्छे हैं, गाल भी बहुत, एक जरा सी आपकी गर्दन कट गई बाकी सब ठीक है। अगर मैं यूं कहूं कि जरा सी एक गर्दन कट गई बाकी सब ठीक है तो कैसा है बोलो आपका वजूद बाकी रहा? ऐसी अगर कोई दहरिया हो गया, उसके पास ईमान ही नहीं, तो उसका MBBS क्या कर लेगा, उसे कब्र के अज़ाब से बचा लेगा, जहन्नम के अज़ाब से बचा लेगा? तो आज बहुत सारे माँ बाप ऐसे पापी गुनहगार हैं, खुद औलाद को बर्बाद करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, औलाद का एक बहुत बड़ा हक है कि शुरू से उसको नेक बनाने की फिक्र करो, अच्छा माहौल दो, अच्छी सोहबतें दो, बुरे माहौल से बचाओ और बुरी सोहबतों से बचाओ। याद रखो, अच्छी सोहबत ये सारी भलाइयों का सरचश्मा है और बुरी सोहबत ये सारी बुराइयों की जड़ है। एक शायर ने एक जुमले में कहा है, सोहबते बद से हमेशा भाग तू, वरना हो जाएगा काला नाक तू। काला, मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा खतरनाक, काला नाक तो बहुत से बहुत डस लेगा तो मर जाओगे, लेकिन बुरी सोहबत ऐसी खतरनाक चीज है कि उसकी वजह से बाद मरतबा खात्मा कुफर पर हो जाता है और जहन्नम हमेशा के लिए उसका मुकद्दर बन जाता है, कुफर की हालत में आदमी मरता है। तो हमने दोनों पहलू वाजे कर दिया, बेशक माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, उनकी कदर करना चाहिए, नाफरमानी नहीं करना चाहिए, लेकिन वालदैन को भी चाहिए कि शुरू से औलाद को अच्छा, अच्छा अब बिगड़ गई अब क्या करने का, मैंने पहले बताया था कि शुरू से बचपन में मदरसे में भेजो, जब बड़े हो गए नहीं बात मानते हैं तो अल्लाह वालों की सोबत में भेजो और जमात में भेजो, बड़े हो जाने के बाद अब बच्चों की इसलाह का ही दौरा, और आखिर दम तक आप उनके हिदायत और इसलाह के लिए दुआ करते रहें, आपकी दुआ औलाद के हक में कबूल होगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।